चारित उपशमना लेक्चर नंबर 15 अंतर संबंधी बात अपनी चल रही हो गई थी। अनिवृत्तिकरण का संख्यात बहुभाग बीतने पर, संख्यात वा भाग शेष रहने पर यहाँ चारित्रमुखी 21 प्रकृतियों की सत्ता है तो उसमें जीव अंतर कर देता है, इसकी बात हमने देखी थी। उस संबंधी कुछ प्रश्न उपस्थित हुए थे। ये जो बताया था कि जो अनुदय प्रकृतियों की आवली प्रमाण स्थिति शेष रहती है और जो उदय रूप प्रकृतियाँ हैं उसके अंतर्मूल प्रमाण स्थिति बनती है, ये कथन तो बराबर है। जरा पेज नंबर 172 निकालना। एक सौ बहत्तर पृष्ठ। यहाँ 243 की टीका में हमने पढ़ा था, उसको दोबारा पढ़ के उसका अर्थ देख रहे थे। अंतरायाम के अंत निषेक के ऊपरवर्ती निषेक यानी द्वितीय स्थिति के, वे उदय रूप और अनुदय रूप सर्व प्रकृतियों के समान है। पेज नंबर 172। इसलिए अंतरायाम के ऊपर द्वितीय स्थिति का प्रथम निषेक सर्व प्रकृतियों का एक कालवर्ती होने से समान है, ये तो बराबर घटित हो गया। अब कहते अंतरायाम के प्रथम निषेक के नीचे का जो निषेक वह उदय रूप प्रकृतियों का परस्पर समान है, इसका अर्थ इन्होंने यहाँ ऐसा हो होता है। ये जो जनरल कथन है कि जो उदय रूप एक वेद है और एक संज्वलन क्रोध मानते हैं, पुरुष वेद और संज्वलन क्रोध फॉर एग्जाम्पल, तो उनका अंदर का नीचे ने प्रथम स्थिति का अंतिम निषेक समान है ऐसा कह दिया गया। ये तो सामान्य कथन कहे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आगे पेज नंबर 185 निकालो। यहाँ 268 के उसकी गाथा नीचे का पैराग्राफ, पेज नंबर 185 नीचे की पैराग्राफ में हमको पढ़ना है तीसरी लाइन। वहाँ उदय रूप संज्वलन क्रोध की प्रथम स्थिति पूर्व में ने जब अंतर किया था तभी अंतरकरण के प्रारंभ में अंतर मूर्त मात्र स्थापित थी, उसका प्रमाण पुरुष वेद की प्रथम स्थिति से साधिक था। और अभी हमने जो बताया तो वो सबका समान है। और ये भी यहाँ क्योंकि जो गाथा में नहीं है वो टीका में पता नहीं कहीं से कुछ कंफ्यूजन लगता है, यहाँ इसलिए मैं बता रही हूँ। क्योंकि और नीचे क्या लिखा था उन्होंने कि नीचे से चौथी लाइन लास्ट में, वहाँ उदयमान प्रकृतियों के तो गुणश्रेणी शीर्ष के निषेक और ऊपर के कुछ निषेक उनका अंतर करता है। अब केवल गुण श्रेणी शीर्ष का अंतर नहीं करता, बहुत लंबे का अंतर करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि अभी मान लेते पुरुष वेद की वो स्थिति कितनी बनाएगा जितने पुरुष वेद का उदय काल है, और क्रोध की प्रथम स्थिति कितनी बनाएगा जितना क्रोध का उदय काल है, क्योंकि क्रोध के उदय के काल के बाद भी मान का उदय, माया का उदय, लोभ का उदय, वो सब मिलकर वो सब गुणश्रेणी इतनी लंबी बनी थी। यानी पूरा गुणश्रेणी केवल गुणश्रेणी का शीर्ष नहीं गया है, गुणश्रेणी का बहुत बड़ा पार्ट उसमें चला गया अंतर में, ऐसा यहाँ मानना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ जो बाकी डिस्क्रिप्शन दिया है जो गाथा में नहीं है परंतु पीछे लिखा है, परंतु ये डिस्क्रिप्शन वहां तो लागू हुआ था प्रथमोक्षम द्वितीयोक्षम में, केवल गुणश्रेणी शीर्ष ही चला गया था अंतर, परंतु यहाँ केवल गुणश्रेणी शीर्ष ही गया ऐसा मानेंगे तो वो बात गठित नहीं होगी। यानी यहाँ प्रथम स्थिति तो अंतर्मुख मात्र स्थापित, परंतु वो कितनी स्थापित, जितना वेद का उदय काल है उतनी वेद की प्रथम स्थिति स्थापित, उससे कुछ अधिक क्रोध की प्रथम, क्योंकि वेद का यानी अपगत वेदी होने पर, वेद का उदय मिटने पर भी कुछ काल तक क्रोध का उदय चलता है, क्रोध का उदय बंद भी चलता है। पहले बार में वो हम देखते हैं ना कि सवेद भाग था, बाद में क्रोध का उदय भी चलता है बंद भी चलता है, उसके बाद में मान का बंद चलता है कुछ काल तक। तो यहाँ जो प्रथम स्थिति स्थापित है क्रोध की वो कितनी है, क्रोध का उदय काल प्लस एक अवधि, और यहाँ इसकी कितनी स्थापित की है, जितना यहाँ जो पुरुष वेद का यहाँ उदय का जितना अवशेष रहा है उतना, ऐसे मानकर चलेंगे तो बाकी आगे का कंफ्यूजन जो सब कुछ चल रहा था डिस्कशन, ये सूक्ष्म सांप्रदाय इतना होगा वगैरह वगैरह, वो सब घोटाला नहीं होगा। ये तो मेरे सामने अभी ना धवला है ना जय धवला है, परंतु कुछ स्मरण से मैं ये बात बता रही हूँ, और यहाँ पर भी हमें 185 पेज पर आपको बता दिया कि इन दोनों की स्थिति समान नहीं है। पुरुष वेद की तो उतनी होगी क्योंकि जितना अभी इसका उदय काल है उतने तक ही उसका उसके निषेक बनेंगे, ज़्यादा नहीं बनेंगे, ऊपर का सब अभाव हो जाएगा। और जितना संज्वलन क्रोध का उदय होने वाला है उसमें एक आवली बढ़ाकर इसमें ये स्थिति स्थापित होगी, क्योंकि वो जो लास्ट आवली है उसका उदय नहीं होगा, वो क्या होगा वो हम देखेंगे जब आगे चलेंगे तब। ये मुझे जरा फिर से बताना था, ये बोर्ड पर आपको बता दें वहाँ क्या लिखा था, केवल गुणश्रेणी शीर्ष चला जाता है, ऐसे नहीं गुणश्रेणी का बहुत लंबा पार्ट उसमें चला जाएगा, ये उसका अर्थ होगा। यानी जितना भी क्रोध जितने काल तक उदय में आने योग्य काल है उतने की ही प्रथम स्थिति बनेगी, बस इतना यहाँ ग्रहण करना और ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाकी गाथा मूल गाथा में तो इतनी सब बातें नहीं है जो नीचे लिखी है। ऊपर की सबकी स्थिति समान है ये तो बराबर है, अनुदय रूप के सबके नीचे की स्थिति समान है वो भी बराबर है, परंतु उदय रूप जो दो है वो एग्जैक्टली समान नहीं है, क्योंकि वो 185 पेज पर अभी आपको बताया, जब स्थिति स्थापित की थी तो पुरुष वेद से संज्वलन क्रोध की स्थिति ज़्यादा होगी, यदि वो स्त्रीवेद या नपुंसक वेद वाला होगा तो उसकी ये स्थिति और भी छोटी होगी, क्योंकि किसका उदय कितने काल तक होता है उसके जरा प्रमाण अलग अलग। पुरुष वेद का उदय लंबे काल तक चलता है, यदि पुरुष वेद की स्थिति स्थापित करेगा तो उसके अपने प्रमाण से होगा, यदि स्त्रीवेद वाला या नपुंसक वेद वाला होगा तो उसकी स्थिति थोड़ी कम होगी, उसका जितना उदय काल होता है उतनी होगी, ये उसका अर्थ है। ये जो सूक्ष्मता है वो उस चार्ट में नहीं बताई गई या उस गाथा में नहीं बताई है, परंतु आगे जो प्रोसेसेस होने वाले हैं वो ये अभी समझेंगे तो आगे बात समझने के लिए आसान होगी। अब ये हुआ अपना अंतरकरण। अंतरकरण के बाद सात करण की प्रारंभ हुआ था, हमने देखा था ये कौन सा द्रव्य कहाँ दे दिया जाता है उसकी तो चर्चा हमने बहुत विस्तार से की है। अब ये जो सात करण होते हैं हमने देखी ना आपके चार्ट में, देखो सात करण कौन से होते हैं, तो मोहनी का एक स्थानीय लता भाग रूप बंध भी होता है और एक स्थानीय उदय भी होता है। मोह का स्थिति बंध यहाँ से संख्यात वर्षों का यानी संख्यात हजार वर्षों का चालू हो जाता है। अभी जो चारित्र मोह की प्रकृतियाँ हैं गुरु में जो संक्रमण होता था, अभी तक कोई भी प्रकृति अन्य किसी में भी संक्रमित हो सकती थी, अब उसका एक विशिष्ट ऑर्डर में ही संक्रमण चलेगा, इसी को कहते हैं आनुपूर्वी संक्रमण। यानी जो स्त्री वेद और नपुंसक वेद है वो पुरुष वेद में ही संक्रमित हो गए, पुरुष वेद और छह नौ कषाय बाकी जो है वो संज्वलन क्रोध में ही संक्रमित हो गए, और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान वो जो है वो भी संज्वलन क्रोध में ही संक्रमित हो गए। संज्वलन क्रोध है, और फिर मान के अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान है वो संज्वलन मान में चले जाएंगे। इस तरह से ये जो विशिष्ट प्रकार से उसका संक्रमण होगा, यहाँ केवल संक्रमण नहीं होता, उपशम भी एक एक का एक एक प्रकृति का उपशम भी क्रम क्रम से होने वाला है। तो अनुपूर्वी संक्रमण नाम का जो ये जो प्रोसेस जिसको कर्म कहते हैं वो यहाँ से शुरू हो जाता है। पांचवा पॉइंट क्या बताया था, अनुपूर्वी संक्रमण होता है, पर सबसे लास्ट वाला कौन सा है, संज्वलन मान वगैरह वो लोभ में चले जाते, पर लोभ अन्य किसी में वो अपने रूप से रहता है, उसका संक्रमण नहीं होता। ये एक पॉइंट अलग से बताया। अब यहाँ से यानी जो अंतर हो गया पूरा, उसके इमीडिएट नेक्स्ट समय से अनंतर समय से ही नपुंसक वेद के उपशमनाय का कार्य यहाँ शुरू हो जाता है। यानी अब यहाँ एट ए टाइम सभी कार्य चलेगा। नपुंसक वेद कहाँ से उपशम होगा, द्वितीय स्थिति में पड़े हुए सब, उदय रूप हो या अनुदय रूप हो, उपशमने का कार्य सारा द्वितीय स्थिति में होगा, संक्रमण का कार्य भी द्वितीय स्थिति में होगा। यानी द्वितीय स्थिति में जो नपुंसक वेद के परमाणु पड़े उसकी जो निश्चय रचना, मान लेते हैं नपुंसक वेद है, पुरुष वेद का उदय भले चल रहा है और इसका उपशमने का कार्य चलेगा, तो पहले समय में सब में थोड़े परमाणु उपशमित हो गए, दूसरे समय में और थोड़े हो गए, उसी समय इसका अनुपूर्वी संक्रमण भी चलेगा, कुछ परमाणु संक्रमण रूप से पुरुष वेद में भी चले जाएगा और बाकी परमाणु उपशमित होते चले जाएंगे। यानी एक ही समय में सभी कार्य चलते रहेंगे, तो ये नपुंसक वेद का उपशम चालू हो जाता है। और पहले जो एक आवली पश्चात, बंधन के एक आवली बाद उदीर्णा हो सकती थी, अब छह आवली के पश्चात भी उदीर्णा हो सकती है, ये एक और विशेषता यहाँ बन जाती है। ये जो सात करण है वो युगपत एक ही समय में प्रारंभ हो जाते हैं। अब जाके हमको उपशम करण की बात यहाँ हम पढ़ने वाले हैं, पेज नंबर 176। यहाँ जो गुणश्रेणियाँ बनी थी सातों ही कर्मों में बनी थी, ज्ञानावरणादि तो गुणश्रेणी उतनी ही रहेगी जितना सूक्ष्म सांप्रदाय का काल और प्लस थोड़ा, उसमें गुणश्रेणी में कोई केवल वो गलित होती चली जाएगी इतना ही। अब यहाँ जहाँ मोहनियों में अंतर पड़ा है उसकी गुणश्रेणी वगैरह सब अंतर में चली जाएगी, और केवल जितना क्रोध का उदय है उस काल से एक आवली प्रमाण अधिक यहाँ क्रोध की प्रथम स्थिति बनेगी। यानी वो गुणश्रेणी का नीचे का जो पार्ट है वो रहेगा, गुणश्रेणी का जो ऊपर का जो ना क्रोध का वेदक, वेदक यानी जब तक क्रोध का उदय है उसको कहेंगे क्रोध वेदक काल, क्योंकि संज्वलन क्रोध का भी अनिवृत्तिकरण का भी जितना काल शेष है, भले क्रोध के उदय से चढ़ा है वो सातवें में आठवें में क्रोध का ही उदय था, पर अभी उसका क्रोध का उदय मिटने वाला है। क्रोध का बंध जब तक क्रोध का वेद का वेदक काल जिसको कहने में आता है, तभी क्रोध मान मायालोक चारों का बंध हो रहा है। ये जो काल समाप्त होने को आएगा एक एक निशे गल कर, तब जाके क्रोध का बंध भी रुकेगा और उदय भी रुकेगा। अब केवल संज्वलन मान माया और लोभ का ही बंध होगा एक अंतर्मुख तक, उसके बाद मान का भी उदय और बंध दोनों रुक जाएंगे और माया और लोभ केवल बंधेगी। ये हम क्रम से देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत प्रश्न उठने की संभावना है, परंतु ये क्रम से देखे जाएंगे आपके प्रश्न, फिर दोबारा उसके पश्चात रखना, क्योंकि जब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं तो प्रश्नों का हल नहीं मिलने वाला है। अब केवल इमेजिन नहीं कर सकते हम उसको क्या हो रहा है, इसलिए अभी तो क्या हुआ है, अभी कितनी स्थिति है, जितना अभी क्रोध का उदय चलेगा उससे एक अवली प्रमाण निषेध यहाँ ज्यादा है, बस इतनी स्थिति बनाई। वो गुण श्रेणी का क्या होगा, जो जितना ऊपर का पार है वो सब अभी अंदर में चला गया है, बस इतना सोचो। केवल शीर्ष नहीं गया है, ये समझना है। यानी क्रोध की जो प्रथम स्थिति बनी है वो सूक्ष्म सांप्राय तक जितनी बनी थी वहां तक नहीं है, ये इतना यहाँ समझ लो। जितना उसका भी उदय होने वाला है उतने काल की यहाँ पहली स्थिति बनी है। अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ कार्य क्या होगा, नपुंसक वेद का उपशम चलेगा, क्रम से एक एक प्रकृतियों का उपशम होगा। पहले एक प्रकृति उपशमित होगी, फिर दूसरी होगी, फिर कभी कभी ग्रुप ऑफ प्रकृति भी उपशमित होगी। वो क्रम से क्या क्या होती है उसकी बात अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर 176 है और गाथा नंबर 250 है। देखो, अंतर करने के पश्चात प्रथम समय से लेकर हमें बहुत सारी बातें देखी ना, वो तो होती ही है। अभी उपशम किस किस का होता है क्रम से, उसकी बात है। प्रथम समय से लेकर क्रम से ने एक के बाद एक 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 अंतर्मूर्त काल द्वारा, तो एक यानी पहले अंतर्मूर्त में एक प्रकृति उपशमित होगी, फिर एक यानी दूसरी प्रकृति उपशमित होगी, फिर सात एक साथ उपशमित हो जाएगी, और चार अंतर्मूर्त में क्रम से तीन तीन प्रकृतियों को उपशम आता है। उनके नाम तो नहीं बताया, इतना ही बताया, एक प्रकृति, फिर एक प्रकृति, फिर सात प्रकृति, और फिर तीन 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 प्रकृतियों को उपशमाता है वहाँ। अब ये जो हम पढ़ेंगे उसका अर्थ देखेंगे, आगे भी उसको एक्सप्लेन कर लिया। एक समय कम दो अवनी मात्र, नवक समय प्रबद्ध को नहीं उपशमाता, इसका स्वरूप आगे कहेंगे वहाँ जानना। इसका स्वरूप कहने वाले हैं, थोड़ा धीरज रखो ऐसा कह रहे हैं। अब ये एक 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 बताए कौन सी है, उसका भी 251 में बताते, 177 पृष्ठ। एक यानी पहला एक यानी नपुंसक वेद को उपशमाता है, फिर एक यानी स्त्री वेद को उपशमाता है, सात नौ कषाय कौन से हो गए, अभी कौन से रह गए, नौ में से दो वेद गए पुरुष वेद, और छह नौ कषाय जो हास्यादि छह है उनको एक साथ उपशमन का कार्य करता है। फिर तीन क्रोध का अर्थ होता है अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, तीनों क्रोध को उपशमाता है। फिर तीन मान, फिर तीन माया, और फिर तीन लोग, ऐसे क्रम से उपशम होने रूप 21 प्रकृतियां हैं। ये तो बिल्कुल स्थूल कथन से क्या होता है इतनी बात उन्होंने बता दी। अब इसमें जो कुछ सूक्ष्मता है विशेषता है उसकी बात अभी बताएंगे। 252 की टीका, अंतर करने के अनंतर प्रथम समय से लेकर जो सात करण प्रारंभ हुए या उपशमने का भी कार्य चालू हो गया, प्रथम समय से लेकर प्रति समय, यानी ये उपशमाने का कार्य एक ही समय में पूरा पूरा नहीं होगा, एक एक समय करके उसको एक अंतर्मुख काल लगेगा, तो प्रति समय नपुंसक वेद का उपशम होता है। वहां नपुंसक वेद के द्रव्य को, नपुंसक वेद का द्रव्य का अर्थ ऐसा है, देखो हमने देखा था हर एक कर्म की अलग अलग हमने ऊपर जो दी गई स्थिति है वो सभी परमाणु में मिलकर जितना टोटल नंबर ऑफ परमाणु है उसको कहेंगे नपुंसक वेद का द्रव्य। पहले समय में कितना उपशमित होगा उसके लिए कहते हैं उस द्रव्य को गुण संक्रमण भागहार के असंख्यावे भाग रूप भागहार। गुण संक्रमण भागहार नाम की कोई विशिष्ट संख्या है, उसका असंख्या तो आपने छोटा हो गया, भाग छोटे संख्या से भाग दिया तो बड़ी प्रमाण बढ़ा जाए, तो इतने प्रमाण में पहले समय में परमाणु उपशमित हो जाए, दूसरे समय में उससे असंख्यात गुणे परमाणु उपशमित होंगे, तीसरे समय में उससे भी असंख्यात गुणे परमाणु उपशमित हो जाएगी। यही कहते हैं यहाँ पर कि वहाँ नपुंसक वेद के द्रव्य को गुण संक्रमण भागहार के असंख्यातवे भाग रूप भागहार का भाग देकर, भागहार यानी भाग जिस संख्या से देते हैं वो मराठी में भागाहार यानी भागहार वो वाली बात नहीं, वो प्रोसेस का नाम नहीं लेना है, भाजक जिस संख्या से भाग देते हैं उसको यहाँ भागहार कहते हैं। जाननहार यानी क्या, भाग हारने भाग देने वाला जो जिस संख्या से भाग देते हैं उस संख्या को यहाँ भागहार कहते हैं। एक खास रुंधारी भाषा है उसमें हम इसको भागहार नहीं कहते, भागाकार कहेंगे तो हमारा प्रोसेस हो गया। और भाजक यानी यहाँ का जो भागहार, ये भाजक के लिए शब्द है, उसका भाग देकर वहाँ एक भाग मात्र द्रव्य को प्रथम समय में उपशमाता है, उससे असंख्यात गुणा द्रव्य को द्वितीय समय में उपशमाता है। इस तरह नपुसक वेद के उपशम काल की समाप्ति तक असंख्यात गुणा क्रम सहित द्रव्य उपशमाता है। प्रति समय जो द्रव्य उपशमाया उसी का नाम उपशमन खाली का द्रव्य है। एक एक लॉट है ना, एक लॉट को खाली कहते हैं। तो संक्रमण का कार्य चल रहा है तो कहेंगे संक्रमण फाली, जब उपशमने का कार्य तो उपशम फाली, ऐसे उसके फाली नाम देते हैं। जब कांडक हो रहे थे कांडक घात, वो जो कांडक घात थी उसकी फाली, ऐसे फाली है ना उसका एक लॉट। अब यहाँ ये जो शब्द है ना गुण संक्रमण भाग हार, आप कहेंगे यहाँ उपशमने का कार्य हुआ है और आप संक्रमण की क्यों बात कर रहे हैं? संक्रमण की बात नहीं कर रहे, हम संख्या की बात कर रहे हैं। देखो पेज नंबर 19 निकालना जरा, भूमिका लब्धिसार भूमिका पेज नंबर 19। देखो ऐसे ये भागहार जो है उसके अलग अलग प्रमाण आते हैं। जैसे हम कहते हैं ना अपकर्षण कितने परमाणुओं का होगा, तो कहेंगे अपकर्षण भागहार से भाग देकर एक भाग प्रमाण अपकर्षित होगा। उत्कर्षण कितने प्रमाण से होगा, उसके लिए भी वह अपकर्षण उत्कर्षण भागहार समान ही होता है, तो कहेंगे उसका भाग देकर एक भाग प्रमाण परमाणु उत्कर्षण होगा। इस तरह से ये उसकी संख्या बताने के लिए शब्द आते हैं। यहाँ पेज नंबर 19 पर एक तो तीसरा पैराग्राफ, वहाँ विवक्षित सर्व परमाणुओं के समूह को, जहाँ जो उत्कर्षण या अपकर्षण की जहाँ बात हो रही है, ये पीठिका में ये शब्दों का अर्थ समझा रहे हैं। उत्कर्षण या अपकर्षण भागहार का भाग देकर, दोनों की वैल्यू सेम है इसलिए उत्कर्षण या अपकर्षण भागहार का, एक भाग मात्र परमाणुओं का ग्रहण करके यथायोग्य ऊपर या नीचे मिलाकर, उत्कर्षण के लिए ऊपर मिलाकर, अपकर्षण में ऊपर से लाकर नीचे मिलाकर उत्कर्षण या अपकर्षण होता है। उस उत्कर्षण व अपकर्षण भागहार का प्रमाण आगे कहे जाने वाले गुण संक्रमण भागहार से तो असंख्यात गुना है, यानी जो अपकर्षण भागहार वो बड़ा है, जिसके असंख्यात भाग प्रमाण गुण संक्रमण भागहार और अधप्रवृत्त संक्रमण भागहार के असंख्यात भाग ऐसे पल्ल के अर्धच्छेदों का असंख्यात भाग, ये हम उसके प्रमाण में मत जाओ। ये अलग अलग संख्याएं जो है उसके अलग अलग नाम है, बस इतना समझना है, उसका प्रमाण भूल जाओ कितना है अर्धच्छेद क्या है, वो अपना यहाँ का विषय नहीं है। अब वो संक्रमण संबंधी जो भागहार आते हैं, वो बार बार उसके शब्द भी आते हैं, उसका अर्थ यहाँ देखते हैं। यदि एक प्रकृति के परमाणु अन्य प्रकृति रूप होते हैं तो उसका नाम संक्रमण है। जैसे संक्लेश बने से पहले असाता विन्य बांधी थी, पश्चात विशुद्धता के बल से उसके परमाणु साता वेदनीय रूप होकर परिणमित है, ऐसे यथायोग्य अन्य अन्य प्रकृतियों का भी संक्रमण जाना। संक्रमण किसे कहते हैं, ये सामान्य कथन हो रहा है, हमारे श्रेणी की बात यहाँ नहीं हो रही है। वहाँ संक्रमण होने में पांच प्रकार के भागहार पाए जाते हैं। भागहार है भाजक संख्या, वो कितनी हो सकती है, कितने पहले समय में कितने हो गए दूसरे समय, वो संख्या बताने के लिए ये भागहारों को नाम दिए गए हैं। तो वहाँ है एक है तो उद्वेलन, जो उद्वेलना संक्रमण होता है, एक समय में कितने परमाणु की उद्वेलना होगी, तो जहाँ नंबर ऑफ परमाणु ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, उद्वेलना होने वाली प्रकृति आपको मालूम है, आपने सुनी हो समय प्रकृति और समय मिथ्या, जो है जीव मिथ्या समय चला जाता है, तो ये दो प्रकृतियों के परमाणु उल्टे संक्रमित होते हैं मिथ्या समय, उसको उद्वेलना कहते हैं। तो कितने परमाणु पहले समय में उद्वेलना से संक्रमित हो गए, दूसरे समय में कितना, उसको कहेंगे उद्वेलना भागहार से भाग देकर उतने परमाणु। ये भागहार का प्रमाण बताने के लिए ये संख्या है, और उसके नाम से संक्रमण को भी वही नाम देते हैं। संक्रमण में कोई विशेष, बस संक्रमण तो संक्रमण है, किसी विशिष्ट प्रकृति में वह संक्रमित हो रहे हैं। अपना सजातीय किसी अन्य प्रकृति रूप होना वही संक्रमण है। एक है विद्यात संक्रमण, तो विद्यात भागार नाम का एक भागार है। एक है अध प्रवृत्त संक्रमण, ये भागार का प्रमाण जुदा है। एक है गुण संक्रमण, ये भागार का विशिष्ट प्रमाण है। एक है सर्व संक्रमण, यानी जितने परमाणु है उस लास्ट समय में जितने वो सारे संक्रमित हो जाए, तो वहां सर्व संक्रमण भागार से भाग देते हैं। तो सर्व संक्रमण भागार की वैल्यू कितनी होगी? जीरो से भाग देंगे तो कितना आनंद आ जाएगा। एक से भाग देंगे, हजार परमाणु का हजार के हजार संक्रमित होने हैं, तो हजार को कितनी संख्या से भाग देंगे तो उत्तर हजार आएगा।
एक
एक। तो सर्व संक्रमण भागार की वैल्यू है एक, यानी अलग अलग भागारों की वैल्यू जुदी हुई है। अब यही बताएं आगे, हमारा वो प्रयोजन नहीं है कौन सा भागार कितना है कितना, उसका अल्पबोध का अपना विषय नहीं है। अब यहाँ आते हैं, अपना पेज नंबर था 177। जब यहाँ उपशमने का कार्य चल रहा है तो नपुंसक वेद के जो कुछ परमाणु तो उपशमित हो रहे हैं, और जो अभी तक उपशमित नहीं हुए उनमें से कुछ परमाणु संक्रमित भी हो रहे हैं पुरुष वेद रूप से। ज्यादा नहीं होंगे पर कुछ परमाणु तो संक्रमित भी, क्योंकि अनुपूर्वी संक्रमण की बात पढ़ी ना आपने। अब 253 की टीका, नपुंसक वेद के उपशम के प्रथम समय में विवक्षित उदय को प्राप्त हुए पुरुष वेद के सर्व द्रव्य को अपकर्षण भागार का भाग देकर वहां एक भाग को पल्ले के असंख्यात भाग का भाग देकर बहुभाग उपरीतन स्थिति में दिया। देखो यहां क्या समझाना चाहिए, पहले पढ़ लेते फिर अपनी भाषा में हम समझेंगे। यहां ये क्या पढ़ रहे उसको पहले बताते हैं। नपुंसक वेद यहाँ पड़ा है, उसका उपशम चल रहा है, और यह ऐसा जीव लिया है जो पुरुष वेद का उदय चल रहा है। नपुंसक वेद को प्रति समय उपशमित हो रहा है, ये तो बता दिया। अब यही कह रहे हैं कि जहाँ नपुंसक वेद के उपशम होने के प्रथम समय में उदय को कौन सा प्राप्त है, पुरुष वेद, विवक्षित उदय को प्राप्त हुए पुरुष वेद के सर्व द्रव्य को, पुरुष वेद का जो ऊपर द्रव्य पड़ा है पूरा उस द्रव्य को अपकर्षण भागार का भाग देकर, क्योंकि वो द्रव्य अपकर्षित होकर इसमें से सर्वत्र से अपकर्षित होकर नीचे इधर भी दिया जाएगा और इधर भी दिया जाएगा अंतर्लान कर, तो उसका प्रमाण कितना है, पल्ले के असंख्यात भाग का भाग देकर बहुभाग उपरीतन स्थिति में दिया। उपरीतन ये ना द्वितीय स्थिति में दिया, इन सभी परमाणुओं में से कुछ द्रव्य निकालकर उसका बहुभाग ऊपर दिया और कुछ भाग नीचे दिया जाएगा। यहाँ पर अवशेष एक भाग को, जो एक भाग नीचे दिया जाएगा प्रथम स्थिति में, उसको पल्ले के असंख्यात भाग का भाग देकर बहुभाग को गुण श्रेणी में, क्योंकि पूरी गुण श्रेणी रूप से ही परंतु नीचे की आवली को हम उदय आवली कहेंगे, तो बहुभाग गुण श्रेणी में और एक भाग उदय आवली में दिया जाएगा। उदयावली में दिया हुआ यह उदीर्णा द्रव्य जितना है, अभी यह कंपैरिजन कर रहे हैं, ये जो अपकर्षित किया हुआ जो उदीर्णा द्रव्य जो पुरुष वेद के अभी उदयावली में दिया, पुरुष वेद का ही द्रव्य उसी के उदयावली में दिया है, यह उदीर्णा द्रव्य जितना है उससे उसी पुरुष वेद का उदय द्रव्य असंख्यात गुना है। ये क्या कहना चाहते, उदय किसका हुआ, ये पूरे निषेध का, ये पूरा निषेध बहुत बड़ा हुआ था ऑलरेडी, भले कितनी भी उदीर्णा क्यों ना हो परंतु ये ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग निश्चय कितना बड़ा है, तो उसके सामने जितना उदीर्णा में वाला द्रव्य है उससे असंख्यात गुणा, तो यहाँ का पूरा उदय रूप द्रव्य है, ये कहना है। उदय किसका होगा, उदीर्णा वाला द्रव्य, और पहले पूरा निषेक जो है उदय रूप जो हुआ है नीचे का निषेक वो बहुत बड़ा, ये इतना कहना है उनको, तो उदीर्णा द्रव्य से पुरुष वेद का उदय द्रव्य असंख्यात गुणा है, क्योंकि पहले गुणश्रेणी का द्रव्य इन निषेकों में दिया था, अभी कब से वो गुणश्रेणी बन गई थी और सब अपकर्षण भी हुआ था, स्थिति कांडक भी हुए थे, तो इन निषेकों में बहुत बड़ा यानी द्रव्य देते 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 निषेक बहुत बड़े हुए, इसलिए ये उदय वाला जो द्रव्य है वो भी बहुत बड़ा निषेक है वो, इसलिए वो ऑलरेडी असंख्यात गुणा है। वह पल्ले के असंख्यात में भाग का भाग देकर बहुभाग मात्र है। यहाँ ये कंपैरिजन कर रहे हैं, अपकर्षित होने वाला जो पुरुष वेद का द्रव्य है जो उदयावली ने दिया है, उससे पुरुष वेद का जो उदय रूप द्रव्य है इस निषेक में जो टोटल द्रव्य है वो असंख्यात गुणा है। उससे अभी उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, नपुसक वेद का द्रव्य संक्रमण द्वारा पुरुष वेद रूप हुआ वह असंख्यात गुणा है। हमने बोला था यहाँ संक्रमण भी चल रहा है, यहाँ का नपुसक वेद का द्रव्य कुछ तो संक्रमण होकर पुरुष वेद में जा रहा है और कुछ अपने रूप से उपशमित हो रहा है, तो यहाँ का पुरुष वेद का जितना उदय रूप द्रव्य है उससे भी ये संक्रमित होने वाला एक समय में वो असंख्यात गुणा है। जिस कंपैरिजन में उसका हीनाधिकता ख्याल में आवे इसका ही वर्णन है और कुछ नहीं इसमें, क्योंकि उस भागार से गुण संक्रमण भागार का प्रमाण असंख्यात गुणाहीन है। उससे नपुसक वेद की उपशम फाली का द्रव्य असंख्यात गुना है। एक समय में जितना द्रव्य उपशमित होता है वो उससे भी असंख्यात गुना है। जितना नपुसक वेद का द्रव्य एक समय में पुरुष वेद रूप होता है उससे असंख्यात गुना द्रव्य एक समय में उपशमित होता है, ये उसका अर्थ है बस। हमने क्या क्या देखा, पुरुष वेद का उदय है, पुरुष वेद के यहाँ से वो सब अपकर्षण होकर उदयावली में जितना देता है उससे वहां उदय होने वाला द्रव्य असंख्यात गुणा है। उससे नपुसक वेद जो पुरुष वेद में संक्रमित होता है एक समय में वो असंख्यात गुणा है। उससे जो उपशमित होता है एक समय में वो असंख्यात गुणा है। इतनी ख्याल नहीं होगा, आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये वाक्यों का अर्थ घुसते घुसने तक टाइम लगता है थोड़ा है। वो क्या कहना चाहते हुए ख्याल में नहीं आता जल्दी। इसी तरह द्वितीय आदि समयों में भी अल्प बहुत्व जानना, यानी एक समय में जैसा ये अल्प बहुत्व यानी कौन सा द्रव्य यानी कौन सा प्रमाण कम है किसका प्रमाण ज्यादा है इसको कहेंगे अल्प बहुत्व। अल्प से बहुत तक, उदीर्णा द्रव्य सबसे अल्प, उससे उदय का द्रव्य असंख्यात गुना, उससे संक्रमण का द्रव्य असंख्यात गुना, उससे उपशम का द्रव्य असंख्यात गुना, इतनी बात उन्होंने बताई। दूसरे तीसरे समय में यही प्रपोर्शन हो जाएगा क्योंकि हर एक का अपना अपना द्रव्य असंख्यात गुना बढ़ रहा है, फिर भी आपस में अल्प बहुत्व यही रहेगा उसका। आगे पढ़ेंगे 254 की टीका। अंतरकरण के पश्चात नपुसक वेग के उपशमाने के प्रथम समय से लेकर मोहिनी के स्थिति कांडघात और अनुभाव कांडघात नहीं है। देखो क्या कहना चाहते, अंतर किया वो सात करण हमने देखे थे ना, उसमें हमें ये भी एक सोच लेना अंतर करने के बाद अभी स्थिति कांडघात और अनुभाव कांडघात नहीं होगी। मोहिनी में ज्ञानावरणादि में चले गए, उनमें चले गए, उनकी स्थिति घटना उनका जो कुछ जो चल रहा है अनुभाव कांडघात उनमें सब में चले गए, क्योंकि मोहिनी में क्या होने वाला है, उपशम होने वाला है, उसको उपशमित करने वाले है, तो उसमें अभी स्थिति कांडघात और अनुभाव कांडघात का प्रोसेस रुक गया है। उसमें अंतरकरण किया तब उसमें लास्ट स्थिति कांडघात और अनुभाव कांडघात जो होने थे वो हो गए। अब अंतर करने के पश्चात मोहिनी में नहीं होगी, ये यहाँ पे है, ज्ञानावरणादि में होगी। फिर से पढ़ते देखो, अंतरकरण के पश्चात नपुसक वेद के उपशमाने के प्रथम समय से लेकर मोहिनी के स्थिति कांडक घात और अनुभाव कांडक घात नहीं है, क्योंकि उपशम में रूप होने वाली कर्म की स्थिति के कांडक घात नहीं होता। जो स्थितियां उपशमित होने वाली है, जो निषेक उपशमित होने वाले हैं, उसका घात करने से क्या मतलब हो, तो अभी उसको अंतर्मुख तक तो ऐसे भी दबा देने वाले हैं। अब यहां कोई कहेगा, पंडित टोलरमल जी कहते कोई प्रश्न पूछेगा, क्योंकि हमें तो लगता है हम ज्यादा होशियार हैं इसलिए हम प्रश्न भी पूछ लेते क्या कि उपशम रूप नहीं होने वाली ऐसी नपुसक वेद बिना, यहाँ तो नपुसक वेद का उपशम चालू है, अभी स्त्री वेद का नहीं किया, पुरुष वेद का नहीं किया, आश्चर्य का नहीं किया, क्रोधादि का नहीं किया है, तो उसका तो होने दो ना, उसका स्थिति कांडन होने में क्या बात है, ये प्रश्न है। तो कहते हैं नपुसक वेद बिना अन्य प्रकृतियों का तो कांडघात होता होगा, ये प्रश्न है। ऐसे प्रश्न इसलिए यहाँ पूछे जाते हैं, आचार्य भी पूछते हैं स्वयं, या यहाँ तो टोरमल जी साहब भी पूछ रहे हैं, क्योंकि इस पर बात पर गौर करके उनको ये ध्यान आकर्षित करना है कि उनका भी नहीं होता, अकेले उपशमित होने वाली प्रकृतियों की बात नहीं, पूरे ही मुनि का, किसी का भी नहीं होगा। स्थिति कांडक घात और अनुभव कांडक घात अब अंतरकरण के बाद मोहनीय का रुक गया, ज्ञानावरणादि का चलेगा, उसमें होगा स्थिति कांडक घात। समाधान, वैसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ सर्वमोहनीय प्रकृतियों की स्थिति समान है और स्थिति के अनुसार अनुभव का भी कांडक घात बिना अवस्थितपना ही है। यानी यहाँ अवस्थितपना नहीं, जैसा का वैसा रहना, अभी कोई कांडक से उसका घात नहीं होगा, बस इतना यहाँ कहना। मोहिनी के स्थिति बंधापसरण का आयाम असंख्यात गुना हीन क्रम सहित वर्तता है। स्थिति बंधापसरण तो चल ही रहा है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था अंतरकरण के पश्चात मोहिनी का स्थिति बंध संख्यात हजार वर्षों का यहाँ से शुरू हुआ, और उसमें भी यथायोग्य अपसरण चलेगा, संख्या में हजारों वर्षों से घटते 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 कुछ संख्या वर्षों तक तो वो भी आने वाला है। नहीं होगा, अब यहाँ रुक जाता है, बस इतनी बात है। अब यहाँ 179, चूंकि यहाँ मोह का स्थिति बंध संख्या हजार वर्ष मात्र होता है, क्या लिखा है वहाँ, संख्या वर्ष लिखा था, और यहाँ मूल ग्रंथ में संख्या हजार लिखा है, क्योंकि ऐसा लगा था कि चार्ट में गलती से लिखा गया है, और यहाँ तो संख्या तो ही लिखा था, संख्या हजार के लिए वहाँ संख्या छप गया था, ये जहाँ सात करण लिखे थे ना, देखो संख्या तो A176 पेज पर पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन, अब संख्या तो वर्ष मात्र होने लगा मोनी का, वहाँ संख्या तो वर्ष लिखा था, और यहाँ तो संख्या हजार वर्ष लिखा है ना, इन्हें हजार के लिए वो संख्या शब्द आया है वहां पर, बस इतनी बात। 179 पेज पर रखते हैं, चूंकि यहाँ मोह का स्थिति बंध संख्या हजार वर्ष मात्र होता है, इसलिए पूर्व स्थिति बंधापसरण से पहले जितना अपसरण होता रहा था, यहाँ स्थिति बंधापसरण संख्या गुना ही पाया जाता है। देखो वहाँ तो पल्ले के असंख्यात में भार मात्र स्थिति थी, तो अपसरण भी ज्यादा होता था, अभी संख्या हजार वर्ष प्रमाण स्थिति बंध है, तो उसके अनुसार उसका कटौती भी संख्यातों में ही होगी, असंख्यातों में तो नहीं होगी, ये कहना था, क्योंकि जितनी स्थिति घटेगी बंध स्थिति घटे तो अपसरण भी उतना छोटा छोटा होता चला जाए। परंतु ज्ञानावरणादि का स्थिति बंध अंतर करने के अंत समय संबंधी स्थिति बंध से असंख्यात गुणाहीन है। इसका अर्थ ये है कि उनका जो कांडक यानी जो अपसरण होगा, कटौती होगी, वो बहुत बड़ी होगी, क्योंकि वो अभी असंख्यात वर्षों का बंध कर रहा है पल्ले के असंख्यात का, और उसका असंख्यात बहुभाग प्रमाण कटौती होकर उसका बंध चल रहा है, इसलिए ये प्रमाण सच्चा है। अभी वो संख्यात हजार वर्ष तक ज्ञानावरणादि नहीं पहुँचे, पहुँचेंगे थोड़े काल में, हाँ, क्योंकि इनके स्थिति बंधापसरण का प्रमाण पल्ले को असंख्यात का भाग देकर बहुभाग मात्र है। वहां किसी एक का स्थिति बंध, किसी एक किसको कहा यहाँ पर, ज्ञानावरण अंतर है, क्योंकि वेदिनीय का भी अलग हुआ था पहले, पल्ले का असंख्यात का भाग मात्र है, अन्य से अल्प है, सभी का पल्ले का असंख्यात का भाग है, नाम गोत्र का भी और वेदिनीय का भी, परंतु उसमें डिफरेंस है हर एक का, उससे असंख्यात गुणा विषय का है और उससे डेढ़ गुना वेदनीय का, कुछ अधिक कहा वो डेढ़ गुना है, ये उसका अर्थ है। अब यहाँ एक बात और बताते हैं कि जहां जाकर 32 वर्ष का स्थितिबंध होगा, देखो 32 वर्ष का स्थितिबंध जहां से होता है वहां से लेकर जहाँ जघन्य स्थिति बंध होता है वहां तक, यानी अंतिम स्थिति बंध तक बंधाक्षरम का प्रमाण अंतर्मुख हो गया। अभी तो संख्यात हजार वर्ष हो रहा है, तो उसके प्रोपोर्शन में कुछ हजार वर्षों का, कुछ संख्यात वर्षों का कटौती हो गया अक्षरम में। ऐसे घटते 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 जब 32 वर्ष प्रमाण स्थिति बंध होने लगा, उसके बाद जो कटौती का प्रमाण है वो अंतर्मुख अंतर्मुख हो गया। इस तरह क्योंकि अंतिम स्थिति बंध तो जो यथा योग्य जिसका जो है वो होने वाला है, क्योंकि वो अलग अलग होगा। पुरुष वेद का अंतिम स्थिति बंध, क्रोध का अंतिम स्थिति बंध, मान का, वो अलग अलग है। वो अलग अलग अपने अपने पॉइंट पर वो बताएंगे कितना होता है। अभी जरा आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, अभी ये तो एक जनरल कथन है, ये कॉमन जनरल कथन है। अभी किसी का भी 32 वर्ष नहीं पहुंचा, अभी नहीं पहुंचा। कुछ एक पर्टिकुलर संख्या बताइए, क्योंकि जब यहाँ पुरुष वेद का जो अंतिम समय होगा ना, वहाँ उसका मिनिमम बंद होगा, वो 32 वर्ष तक पहुंचेगा, और बाकी तब संज्वलन का 64 वर्ष का होगा, ये बताएंगे अभी यहाँ पर। पेज नंबर 180, 258 की टीका। ऐसे संख्यात हजार स्थिति बंध व्यतीत होने पर, देखो ये स्थिति बंध का कटौती होना ये तो चल ही रहा है, क्योंकि कांडक घात तो रुक गए ना, अब केवल स्थिति बंधाक्षरण हो रही, इतना कहेंगे तो एक एक अंतर्मुख में एक एक स्थिति बंधाक्षरण होते हैं। ऐसे नपुसक वेद के उपशम काल में भी संख्यात हजार स्थिति बंध होने पर अंतर्मुख काल द्वारा नपुसक वेद का उपशम होता है, यानी वो संख्यात हजार जितने अंतर्मुख मिलकर नपुसक वेद का उपशम में का अंतर्मुख हुआ, ये उसका अर्थ है। उसके पश्चात उसी प्रकार यानी नपुसक वेद के उपशम वत अंतर्मुख काल द्वारा स्त्री वेद को उपशम आता है। पहले हमने क्या देखा, अभी मान लेते ना ये सारे नपुसक वेद के परमाणु, वो तो पहले तो अभी कब की चली गई अन्य रूप होकर। अब यह एक समय, दो समय, तीन समय हमने देखे थे ना, यहाँ बंधाक्षरण भी चल रहा है, यहाँ संक्रमण भी चल रहा है, और यहाँ उपशम भी चल रहा है, तो ये उपशमित हुए सभी पूरे। उसके पश्चात क्या होगा, मान लेते हैं स्त्री वेद की स्थिति, तो स्त्री वेद में भी ऐसा ही चलेगा, कुछ संक्रमित होगी, कुछ उपशमित होगी, वो अंतर्मुख काल के द्वारा उसका भी ऐसा ही कार्य चलेगा, स्त्री वेद के उपशमनाय का कार्य चलेगा। अब इसको पढ़ेंगे हम। हाँ, अंतर्मुख काल द्वारा स्त्रीवेद को उपशम आता है। 258 की टीका तीसरी लाइन, यहाँ स्त्रीवेद के द्रव्य को स्थापित कर, स्त्रीवेद के द्रव्य को स्थापित कर का अर्थ है द्वितीय स्थिति में जितने परमाणु पड़े हैं स्त्रीवेद के निषेकों में, सभी टोटल नंबर ऑफ परमाणु स्थापित करके संक्रमण फाली द्रव्य आदि का, यानी संक्रमण फाली द्रव्य ने एक समय में कितना द्रव्य संक्रमित होता है उसका भी प्रमाण लाना है। अल्पभूत का आदि का, यानी संक्रमण द्रव्य कितना होगा, उसमें उपशम द्रव्य कितना होगा, इसका प्रमाण ला सकते हैं, जैसे हमने नपुसक वेद की बात की थी। और कहते अल्पभूत का, अल्पभूत क्या देखा था हमने, वहां उदय चल रहा है पुरुष वेद का, पुरुष वेद का उदीर्ण द्रव्य से उसका उदय द्रव्य असंख्यात गुना, उससे स्त्री वेद का संक्रमण द्रव्य असंख्यात गुना, और उससे उसका उपशमन द्रव्य असंख्यात। ये हमने जो अल्पभूत्व वहां देखा था ऐसा ही अल्पभूत्व, और प्रति समय असंख्यात गुना क्रम का वर्णन, जो जिसका जो अल्पभूत्व है, जैसा एक समय में संक्रमण कितना होता, दूसरे समय में उससे असंख्यात गुना, उपशम भी पहले समय में जितना होता था दूसरे समय में उससे असंख्यात गुना, ये ही क्रम इसमें भी चलेगा, असंख्यात गुना का क्रम यहाँ पर भी चलेगा। इसका वर्णन पूर्वोक्तवत जानना, जैसे नपुसक वेद में बताया ऐसा ही यहाँ पर भी हो जाएगा। परंतु यहाँ इतना जानना कि ज्ञानावरणादि कर्मों का स्थिति अनुभव कांडक घात और आयु बिना सात कर्मों का स्थिति बंध पूर्व प्रमाण से अन्य प्रमाण वाला होता है, यानी उनमें स्थिति कांडक घात भी हो रहे हैं, अनुभव कांडक घात भी हो रहे हैं, जितनी स्थिति की कटौती उसका तो कांडक का प्रमाण भी छोटे छोटे होते चले जाएंगे इसके आगे। तो अन्य प्रमाण वाला इन्हें एक कांडक होने के बाद वो दूसरे कांडक का प्रमाण छोटे बनता जाएगा। अब 259 की टीका, स्त्री वे उपशमाने के काल का संख्यात्वा भाग जाने पर। अभी क्या कहते हैं, हमने देखा कि स्त्री वे एक समय में उपशमित हुआ, दूसरा समय में उपशमित हुआ, अंतर मुहूर्त लगेगा। तो ये जब तक ये उपशमने का कार्य चल रहा है तो संख्यात्वा भाग चला गया, चल रहा है कार्य उस समय। और क्या विशेष बात होती है वहाँ, तो स्त्रीवेद उपशमने का काल का संख्यात्वा भाग जाने पर मोह का स्थितिबंध संख्यात हजार वर्ष मात्र होता है, जो अन्य कर्मों से अल्प होता है। पहले भी संख्यात हजार वर्ष था, यहाँ पर भी संख्यात हजार वर्ष है। नहीं समझते, 80,000 वर्ष भी संख्यात हजार वर्ष है, 60,000 वर्ष भी संख्यात हजार है, 20,000 वर्ष भी संख्यात हजार है। तो पहले से कम परंतु संख्यात हजार वर्ष ही होता है, उससे संख्यात गुणा ऐसा संख्यात हजार वर्ष मात्र तीन घाती कर्मों का। मान लेते इसका 20 है तो 20 का 80 हो सकता है, संख्यात हजार यानी इससे मोहनीय से संख्यात गुणा। अभी तक ज्ञानावरणादि तीन का बंध कितना था, असंख्यात वर्षों का। यह पहली बार वो संख्यात हजार वर्ष तक आ गया है। किस काल में, जिस काल में स्त्रीवेद को उपशमने का कार्य चल रहा है और उसका संख्यात्वा भाग बीत गया है, उस काल में ज्ञानावरणादि कर्मों की स्थिति बंध संख्यात हजार होता है। मोहनीय का संख्यात हजार फर्स्ट टाइम कब हुआ था, अंतरकरण के नेक्स्ट समय। और अभी ज्ञानावरणादि का कब हुआ, स्त्रीवेद के उपशमने के काल में। ये ख्याल में आई बात, आगे बढ़ेंगे। उससे असंख्यात गुणा पल्ले के असंख्यात वे भाग मात्र नाम गोत्र का। अभी नाम गोत्र पल्ले असंख्यात वर्षों का हो रहा है, उसका भी नंबर नहीं आया है संख्यात हजार वर्ष होने का। उससे कुछ अधिक सातावेदनीय का स्थितिबंध होता है। इसी काल में केवल ज्ञानावरण केवल दर्शनावरण बिना तीन घाती कर्मों का लता समान एक स्थान गत ही अनुभाग बंद होता है। मोहनीय का एक स्थानीय अनुभाग बंद कब हुआ था, सात कर्म हुए थे अंतरकरण के पश्चात। इन कर्मों का तो देशघातीकरण तो पहले हुआ था, पर देशघातीकरण में द्वि स्थानीय रह गया, अब एक स्थानीय हुआ है। डिफरेंस ख्याल में आता है ना, पहले हमने उसको देशघातीकरण में देखा था, देश गायने सर्वघाती देशघाती सब बनते थे, केवल देशघाती बनना शुरू हुआ था, फिर भी द्वि स्थानीय था। अब यहाँ एक स्थानीय हुआ, यानी लता समान हो गया। देखो फिर से पढ़ते, इसी काल में केवल ज्ञानावरण केवल दर्शनावरण बिना, क्योंकि वो तो सर्वघाती है, तीन घाती कर्मों का, तीन घाती कर्म कौन से, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतर है, इनका लता समान एक स्थानगत ही अनुभाग बंद होता है। 181 इसी तरह स्त्रीवेद को उपशमाने के अनंतर समय से लेकर, देखो एक का उपशमना हुआ तो इमीडिएट नेक्स्ट समय से अन्य प्रकृतियों का उपशम चालू हो जाता है। अन्य अनंतर समय से लेकर पुरुष वेद और हास्यादि छह इन सात प्रकृतियों को उपशमाता है, यानी वो भी प्रति समय उसका उपशमाना हो और उसका संक्रमण हमने देखा था संज्वलन क्रोध में हो जाएगा वो भी चलेगा उसका। उनको उपशमाने का काल अंतर मुहूर्त मात्र है, उसका संख्यात्वा भाग जाने पर क्या होता है वह कहते हैं। तो कहते सर्व ही कर्मों का स्थितिबंध संख्यात हजार वर्ष प्रमाण होता है। देखो जब अंतरकरण के नेक्स्ट समय में मोहनीय का संख्यात हजार वर्ष हुआ था, जो नपुंसकवेद का उपशम का पहला समय था, स्त्रीवेद के उपशमने का संख्यात्वा भाग जाने पर ज्ञानावरणादि तीन का बंध स्थितिबंध संख्यात हजार वर्ष हुआ था, नाम गोत्र का और वेदनी का असंख्यात वर्षों का था। अब सात नौकशायों के उपशमने का कार्य शुरू हुआ, उस काल में नाम गोत्र और वेदनी सबका बंध संख्यात हजार वर्षों तक आ चुका। वहां अल्प स्थितिबंध मोह का, सभी को संख्यात हजार वर्ष कहेंगे फिर भी मोहनी का सबसे अल्प, उससे संख्यात गुणा तीन घाती कर्मों का, उससे संख्यात गुणा नाम गोत्र का और उससे कुछ अधिक वेदनी का जानना। इस तरह नपुसक वेद के उपशमवत सात नौ कषायों का अवशेष बहुभाग उपशमाने का बाकी रहा था उनका अंत समय में उपशमाना होता है, क्योंकि पहली फाली से दूसरी फाली असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात, जो अंतिम फाली है ना वो सबसे लेकर भी असंख्यात गुना होती है, इसलिए जितना बाकी था वो सब उपशमाए। सात नौकषायन को उपशमाने का कार्य पूरा हुआ। जब सात नौकषायन का उपशम चल रहा था, देखो यहाँ उदय पुरुष वेद का हो रहा है, पुरुष वेद के उदय में यहाँ एक एक निषेध गल रहा है, उसकी प्रथम स्थिति तो बढ़ने वाली नहीं है, इसी में से एक एक निषेध गल कर ये स्थिति घटने वाली है। कुछ काल तक नपुंसक वेद को उपशमाया और कुछ काल तक स्त्री वेद को उपशमाया था, और जो बाकी है उसमें पुरुष वेद यहाँ का ऊपर का पुरुष वेद और हास्यादि छह नौकषाय इनको उपशमाया। तो जब तक पुरुष वेद का उदय था तब तक पुरुष वेद का बंधन भी हो रहा था, तो लास्ट लास्ट में बंधे हुए कहाँ उपशमाए हैं, उसका उपशम बाकी है। हाँ, उसको कहेंगे नवक समय प्रबद्ध, नए नए बंधे हुए, क्योंकि बंध के बाद एक आवली तक कर्मों में कुछ परिवर्तन नहीं होता, फिर उपशमाने के लिए एटलीस्ट एक आवली लगती है, तो लास्ट एक समय कम दो आवली में जो कर्म बंधे हैं पुरुष वेद के वो अभी उपशमना से बाकी है, इतने समय प्रबद्ध का उपशमना नहीं हुआ। तो जिसकी जिसकी आवली पूरी होती है उसका एक 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 फाली रूप से उपशम चलता है, तो इतना ये पूरा उपशमना इसके नहीं हुई है, इनके बाद में आगे के जो प्रोसेस चलेंगे उस काल में ये नवक समय प्रबद्ध भी उपशमित हो जाएंगे। समझ में आती बात, जब तक पुरुष वेद का उदय है तब तक पुरुष वेद का बंध भी हो रहा है। अब बंध होते ही उसके उपशमना नहीं होगी, उसके लिए कुछ तो काल चाहिए, तो ये अभी बाकी है। वो आगे वाला जो अभी क्रोध का उदय, तो यहाँ क्रोध का उदय भी चल ही रहा है, परंतु वो जो बाद में वो क्रोध का उपशमने का कार्य चलेगा उस काल में ये नए नए बंधे हुए उसका भी उपशम हो जाएगा। ये बात अभी बताने वाले हैं, उसके पहले हम अपनी भाषा में समझते हैं। देखो अभी आगे 181 पेज नीचे का पैराग्राफ लास्ट, इतना विशेष है कि, यानी ये कुछ विशेषता है, उस अंत समय में पुरुष वेद के एक समय कम दो आवली मात्र नवक समय प्रबद्धों को छोड़कर अवशेष सर्व को उपशमाता है। देखो हास्यादि नौ कषाय तो सभी उपशमित हो गए, क्योंकि उनका कोई बंध नहीं था, ना बंध था ना उदय था, बंध तो हास्यादि चार का तो अपूर्वकरण के अंत में बंध रुक गया था, उदय भी वहीं पर सभी का रुक गया था छो का। तो कहते ये नवक समय प्रबद्ध किसमें बात आएगी, पुरुष वेद, क्योंकि इसका बंध है। हास्यादि जितने थे वो उपशमित हो चुके, नपुंसक वेद का भी बंध नहीं था तो सारे उपशमित हुए अपने ही काल में, स्त्री वेद का भी बंध नहीं था वो सब अपने काल में उपशमित हुए, पर पुरुष वेद का बंध है तो वो उस काल में उपशमित नहीं हुए सर, लास्ट लास्ट में बंधे हुए बाद में उपशमित हो जाएंगे, उसका नाम है नवक समय प्रबद्ध। तो कितने काल में बंधे हुए नहीं उपशमित हुए हैं, तो यहाँ क्या लिखा है, एक समय कम दो आवली। अभी इसको बाद में पढ़ेंगे समझेंगे कैसा उसका प्रमाण निकाला उन्होंने। हाँ अभी आगे पढ़ते पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं, नवीन जो समय प्रबद्ध बनते हैं उनको नवक समय प्रबद्ध कहते हैं। बंध समय से लेकर आवली काल को बंधावली कहते हैं। हमारी भाषा में समझने के लिए मान लेते हैं आवली के चार समय होते हैं असंख्यात, हमें तो समझना है क्या होता है, तो मान लेते हैं बंद समय से लेकर आवली काल तक, यानी बंद का समय गिनना, तो ये बंद का समय एक दो तीन चार, ये तो बंधावली कहलाएगी। उसके बाद उसका उपशमाने का कार्य चलेगा, वो भी आवली प्रमाण में चलेगा, यानी चार समय तक तो उसका बंद के समय से लेकर चार समय तक तो कुछ नहीं हुआ, उसके आगे के चार फालियों में उसका उपशम पूरा हो जाएगा। इतनी तो बात ख्याल में आती ना। देखो अब यहाँ क्या समझाने जाते कि बंध के समय से लेकर आवली काल को बंधावली कहते हैं। बंधा हुआ द्रव्य बंधावली में उपशमने योग्य नहीं होता। बंधावली यानी कोई भी कर्म जब उसका बंध होता है, समय जिस समय बंध हुआ है उस समय से लेकर एक आवली काल तक उस कर्म में कुछ परिवर्तन नहीं होता, ना उदीर्णा होती है, ना संक्रमण होता है, ना कुछ भी नहीं हो सकता उसमें, यहाँ उसका उपशम भी नहीं हो सकता। उसको बंधावली अचलावली नाम है उसका। तो कहते बंधा हुआ द्रव्य बंधावली में उपशमने योग्य नहीं होता। और एक समय प्रबद्ध को, एक समय प्रबद्ध ने एक समय में जितने परमाणु बंधे हैं उस समय भी निषेक रचना हुई ना जो कुछ, तो उसको पूरे को उपशमाने के लिए, एक समय प्रबद्ध को उपशमने की समय समय संबंधी आवली मात्र फाली यहाँ होती है। ये जो नवक समय प्रबद्ध है वो पूरा उपशमाने के लिए उसको कितना काल लगता है, तो आवली प्रमाण काल लगता है। मैंने देखो आवली में तो असंख्यात समय होते, उतनी फालियाँ होगी, हमें समझने के लिए हम चार समय चार लेंगे समय, तो चार फालियों में उपशमित हो जाएगा। मैंने देखो ये बंद का समय, ये चार समय और उसके चार समय, मैंने यहाँ बंधा हुआ इस समय में पूरा उपशमित हो जाएगा। चार समय में कुछ नहीं हुआ, फिर उसकी उस समय प्रबद्धि की एक फाली, दूसरी फाली, तीसरी फाली, चौथी फाली, यानी इतने काल में वो उपशमित हो जाएगा। यानी मान लेते हैं पुरुष वेद का यहाँ तक उदय था, तो यहाँ जो बंधा हुआ था उस समय बंधा हुआ, वो कब जाके पुरुष वेद के अंतिम समय में बंधा हुआ। फिर से देखो सोचो, यहाँ जो बंधा द्रव्य है तो यहाँ एक समय गिनो उसको, यहाँ बंधा हुआ एक समय, फिर यहाँ से एक समय, दो समय, तीन समय, चार समय तक कुछ नहीं होगा, पाँच छः सात आठ, आठवें समय में वो पूरा उपशमित हो जाएगा। आठ समय में पूरा उपशमित हो जाएगा, यानी बंध के बाद एक समय कम दो आवली है ना, उसका बंध का समय छोड़े थे, एक समय कम दो आवली में सारा उपशमित हो जाएगा। कितना भी क्यों ना बंधा हो वो सारा ही उपशमित हो चुका है। ये सब कुछ आबादा कितना भी क्यों ना हो, कितने ही, क्योंकि यहाँ तो कितने अंत कोड़ा कोड़ी के निषेक पड़े हैं, सारे उपशमित हो चुके हैं। पहले बंधे हुए का कोई सवाल नहीं है, अंतिम जो बंधे है वो उपशमित नहीं हुए थे। वो अधिक से अधिक कितना काल लगे, जो लास्ट जो है लास्ट समय में बंधा हुआ एक समय कम दो आवली में उपशमित हो जाएगा, बस इतनी बात है।
वो प्रथम स्थिति में
होगा, प्रथम ये सारा ऊपर है, ये जो उपशमने का कार्य है वो द्वितीय स्थिति में चल रहा है, प्रथम स्थिति सारी उदय रूप होकर उदय में आने वाली है। ये सब उपशमने का कार्य द्वितीय स्थिति में हो रहा है, क्योंकि यहाँ से कोई परमाणु अपनी जगह छोड़कर उदय रूप नहीं हो गए, ऐसी कंडीशन बना रहे। ये तो सब उदय होकर चले जा रहे हैं, यहाँ उपशम चल रहा है, यहाँ बंधा हुआ यहाँ पड़ा है, इस समय बंधा है, जिस समय इसका उदय है उस समय यहाँ जो कोई समय प्रबद्ध बंधा वो द्वितीय स्थिति में पड़ा है, उसका उपशमन होगा। निषेक उसके ऊपर पड़े, द्वितीय स्थिति में सारे जो थे ऑलरेडी उसका उपशम भी चल रहा था, उसका कुछ संक्रमण भी चल रहा था, अभी जो नया नया बंध है उसको कहेंगे नवक समय प्रबद्ध, उसको उपशम ने इतनी फुर्सत नहीं मिली है ना, पुरुष वेद का समाप्त हो गया है, अभी नया बंध भी नहीं हो रहा है, परंतु जो लास्ट में बंधा है वो आगे क्रोध के उपशम के काल में उसका उपशम हो जाएगा। देखो आगे पढ़ते, देखो 182, ये नवक समय प्रबद्ध की बात बार बार आने वाली है, क्रोध में भी, मान में भी, उसमें भी आने वाली बात है। देखो इसलिए एक समय कम दो आवली मात्र समय प्रबद्ध उपशमित नहीं होते, कैसे वह कहते उसको भी समझाना चाहते हैं, उनको पता है हमको नहीं समझ में आया कुछ, हो गया समझ, थोड़ी देर के बाद समझेंगे उसमें क्या है। बोलो 2400 भगवान की।